पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। ये रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बहुत बड़े काव्य के रूप में, इतिहास के रूप में हमको प्राप्त हुई है। तो महर्षि वाल्मीकि कैसे हैं? गिरि संभूता, गिरि कहते हैं पर्वत को। जैसे आजकल नवरात्र हैं, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, तो दुर्गा को कहते हैं गिरिजा। गिरिजा, जा का मतलब जन्म लिया, गिरि से जन्म लिया मतलब। और उसका दूसरा नाम है शैलपुत्री, शैल भी कहते हैं पर्वत को। तो हिमालय पर्वत की और मेनका की पुत्री के कारण के होने के नाते दुर्गा जी को गिरिजा कहते हैं, शैलपुत्री कहते हैं। तो गिरि कहते हैं पर्वत को, जैसे गिरिराज, सारे पर्वतों का राजा गिरिराज गोवर्धन, वो आज हमारे मित्र दीनबंधु जी वृंदावन से सत्संग में कह रहे थे, पहला 7 दिन 7 रातों का लॉकडाउन भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन धरण की लीला के समय हुआ था। 7 दिन 7 रातें सब लोग गोवर्धन के शरण में थे। तो गोवर्धन धारी के शरण में आप सब, हम सब ऐसे भाव रखकर, गिरि पर्वत है, उसके समान है वाल्मीकि जी। तो पर्वत से क्या नीचे आता है? पर्वत के शिखरों के ऊपर बर्फ जमती है, फिर वो नदी के रूप में नीचे बहकर आती है और सबको हरा भरा कर देती है। तो वाल्मीकि जी है पर्वत के समान, रामायण है महानदी। ये रामायण एक नदी है जिसके तट के ऊपर कोई भाग्यशाली बैठ जाए तो इसके अंदर राम, सीता राम और अन्य भक्तों के चरित्र के अमृत का पान करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। ये नदी, जैसे नदी जहाँ से बहती है सबकी प्यास बुझाती है, धरती को हरा भरा करती है, तो ये नदी जो है, ये रामायण नदी कहाँ से प्रकट हुई? वाल्मीकि जी से। वो पर्वत के समान है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्यम। पुनाति कहते हैं पवित्र करने को, और भुवन कहते हैं इस पूरे संसार को। जैसे आजकल हम सैनिटाइज कर रहे हैं चारों ओर से, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है कौन? ये महानदी। ये भगवान का नाम पवित्र करने वाला है। वेदों में तो ये मंत्र है, ओम भाया भयंत्र सुचे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान का नाम लेने से ओम भाया भयंत्र सुचि सुचि सुचि, ओम अपवित्रो वा पवित्र सर्वस्थांग गतोपि वा, ये सुमरेत पुंडरीकाक्षम भाया भयंत्र सुचि सुचि सुचि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं, अंदर से या बाहर से, बस केवल भगवान के नाम लेने से, भगवान की कथा कीर्तन करने से हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो ये रामायण की महानदी, जो वाल्मीकि महामुनि जो पर्वत के समान है, उनके मुख से ये प्रवाहित हुई है, ये सबको, पूरे ब्रह्मांड को, भूमंडल को पवित्र करने वाली। पुनाति भुवनम त्रियम भुवनम, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। राम सागर गामिनी, नदी जाएगी कहाँ? नदी कहीं से भी निकलती है पर्वत से, लेकिन चाहे जाएगी विश्राम कहाँ करेगी? समुद्र में। तो सागर कौन है? राम सागर गामिनी, राम रूपी सागर के पास जाने के लिए ये रामायण नदी है। इसका एक भाव ये है, रामायण के श्रवण वर्णन से हम भगवान राम का सानिध्य, भगवान राम का शरण प्राप्त कर सकते हैं। राम सागर है और ये रामायण नदी है, और नदी के सहारे हम सागर तक पहुंच सकते हैं। तो ये राम जी का तुलना दी गई है सागर से, और जाते में रास्ते में भगवान तक ले जाने के लिए, भगवान तो पवित्र है, परम पवित्र है, हमको ये रामायण पवित्र करके वहां तक ले जाएगी। है क्या रामायण में? रामायण में क्या है? तो ये पहला मंगलाचरण के श्लोक को आपने हमने पाठ किया, आप भी इसका स्मरण कर सकते हैं। वाल्मीकि गिरीशम भूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुंसम रामायण महानदी। क्या है रामायण में? चरित्र रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। रामायण में है चरित्र भगवान का, किसका? राम का चरित्र। रघुनाथस्य, रघु, ये रघु के कुल में भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ है। महाराज रघु बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, उस कुल में भगवान रामचंद्र का प्रकट्य हुआ है। इसमें आगे चल के भगवान रघु के इक्ष्वाकु कुल में आता है रघु, और इक्ष्वाकु स्वयं अपने विवस्वत मनु का पुत्र है इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु वंश में आगे एक बहुत प्रसिद्ध महाराज रघु हुए। वो कितने प्रसिद्ध हुए कि इस कुल का नाम ही रघुकुल हो गया। महाराज रघु की अद्भुत चरित्र का वर्णन है कि रावण महाराज रघु से लड़ने के लिए आए, तो महाराज रघु जी स्नान कर रहे थे किसी नदी में, रावण को देखा। रावण ने कहा आपसे युद्ध करने आया हूं, तो उन्होंने नदी के अंदर खड़े खड़े मिट्टी का एक छोटा सा जैसे घर बनाया और उसका एक टुकड़ा गिराया और कहा रावण तुम जाओ जाके तेरी लंका को देखो कि एक टुकड़ा उसका गिर गया है कि नहीं गिर गया। रावण ने जाके देखा कि अरे ये तो मेरा लंका का एक टुकड़ा ही इसने नदी में स्नान करते हुए मिट्टी के द्वारा हाथ लगाने से गिरा के ध्वंस कर दिया। फिर भी रावण से रहा नहीं गया, वो रघु से युद्ध करने के लिए आया। और तब रघु ने अपना एक बाण निकाला और उसका जब अनुसंधान करने लगे रघु जी, तो ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होके कहा कि इसको वरदान दिया हुआ है, ये किसी इसको हमारे वरदान का आप खंडन नहीं कीजिए, बहुत से देवताओं ने वरदान दिए हैं, इसको बहुत श्राप है, आप अपने बाण को रख दीजिए। और रावण ने उस बाण को रघु से ले लिया, वो बाण तो ले गए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से उस बाण को रघु ने ले लिया और अपना रावण ने ले लिया। उस बाण को रावण ने अपने ही महल के एक खंभे में रखा, क्योंकि रावण की मृत्यु इस रघु के बाण से ही होनी है। अब जब आगे हम श्रवण करते हैं रामायण में कि जब लंका में भारी युद्ध शुरू होता है और कुंभकर्ण और मेघनाथ के मृत्यु के बाद रावण युद्ध में आता है और रामचंद्र उसका एक गर्दन काटते हैं, एक सिर गिरता है, दूसरा उग जाता है, दसों सिरों को काटे फिर दस सिर वापस आ जाए। आश्चर्य लगा भगवान को, तो विभीषण ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, हमें ये मालूम है कि एक रघु का बाण है और जहां ये बाण है उसी बाण से इसका अंत होगा, लेकिन वो बाण कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा है कहाँ? बोला है रावण लाया था, है रावण के महल में कहीं। बोला मैं पता लगा के आता हूं। हनुमान जी एक ब्राह्मण का ज्योतिषी का रूप धारण करके मंदोदरी के पास चले गए, रावण की पत्नी के पास। बोला सौभाग्यवती भव, आपके सोतोष ने कहा इतने मेरा हमारे सारे वंश का तो विनाश हो गया, मैं रोज देख रही हूँ सर कट रहे हैं हमारे पति के। बोला नहीं, वो कभी नहीं मर सकते जब तक वो बाण रघु का नहीं मिलेगा। अरे आपको कैसे पता? बोला मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सब पता है, वो बाण जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनकी मृत्यु हो नहीं सकती, और वो बाण बहुत सुरक्षित है और मैं उसकी ऐसी पूजा कर दूंगा कि कभी किसी के हाथ नहीं आएगा। मंदोदरी और रावण के अलावा उस बाण का किसी को पता नहीं था। मंदोदरी ने खंभे की तरफ इशारा किया कि यहाँ बाण है महाराज, आप इसकी पूजा कर लीजिए। तब हनुमान जी अपने रूप में आके लात मार के खंभे को गिराया, अंदर से बाण निकाला और दूसरे ही छलांग में आके रामचंद्र के हाथ में वो रघु का बाण दिया। आज रघु के बाण से रघु कुल मणि भगवान रामचंद्र ने रावण का उद्धार किया। तो है क्या, एक नाम रघु क्यों आया है? रघु कितना प्रतापशाली थे कितना महान थे, तो इसलिए कि चरित्र रघुनाथस्य, रघुनाथ का मतलब है रघुकुल का स्वामी, रघुकुल तिलक, तिलक होता है सर के ऊपर, तो स्वामी है रघुकुल का। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, शतकोटि का मतलब 7 करोड़, कोटि कहते हैं करोड़ को, शत कहते हैं 100 को। इतना बड़ा विस्तार रघुनाथ के चरित्र का इस रामायण में है, कोई एक भी इसका कुछ थोड़ा भाग सुन ले, महापातक नाशनम, महापातक का मतलब पातक कहते हैं पापी को, बड़े से बड़े पापी के सारे पाप नाश हो जाते हैं। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरम पुंसम, एक अक्षर भी इसका किसी भाग्यशाली के कान में पड़ जाए, मुख से उच्चारण हो जाए राम का, तो बड़े से बड़ा पापी हो पातकी हो वो पातक और पाप उसका एकदम नाश हो जाता है। वैसे हम 2-4 दिन से भगवद गीता के सत्संग में आपको कह रहे थे कि संसार में पाप के कारण महामारी आती है, पाप मानव मात्र से जाने अनजाने में हो ही जाते हैं। अनजाने पाप को तो छोड़ें, जानबूझ के तो दुनिया में कितना लोग अपराध कर रहे हैं, कुछ लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं और कुछ लोग जानकर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उनके इस कथा का श्रवण वर्णन करने से बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो सकता है। तो यहाँ दूसरे श्लोक में रामायण की महिमा गाई गई है और तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में आइए, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम, आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि कोयल जैसा है, मधुर मधुर उसके मुख से राम का चरित्र गान हो रहा है, रामचरित्र का गान हो रहा है, मधुर मधुर अति मधुर। कहाँ बैठे हैं? कविता शाखा मारूह, कविता की शाखा, कविता में इतनी सुंदर कविता में लिखा है रामायण कि वाल्मीकि जी के अनुष्टुप छंद में रामायण बहुत प्रेम से गाई जा सकती है और इसका गान अद्भुत गान किया जा सकता है। तो ऐसे वाल्मीकि कोयल के समान मीठा राम के चरित्र को कविता में लिखा है, उसको प्रणाम करते हैं। भगवान मिलता है केवल भक्त की कृपा से, जब तक भक्त की कृपा नहीं हो तब तक भगवान का पता भी नहीं लगता है। तो जिस भक्त के द्वारा भगवान मिलता है, यहाँ हनुमान जी उसका प्रतीक है। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना गया बिन पैसारे, राम के दरवाजे के बाहर हनुमान जी आप खड़े रहते हैं, आपकी आज्ञा नहीं हो तो कोई राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अरे रोग पिशाच भूत हनुमान जी आप एक बार राम के नाम की हुंकार करें तो ये ताप संताप पाप संकट सब संकट मोचन है। यह संकट आया है पूरे देश पे, लेकिन ये मोचन करने वालों का भगवान का ये महान भक्त संकट से मोचन, उसका मोचन क्या, मोचन का मतलब है तोड़ना, खत्म करना, समाप्त करना। तो ऐसे हनुमान जी की प्रार्थना वंदना में करते हैं। मनुज्वम मार तुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम राम दूतम शरण शिरसे नमामि। मनुज्वम मार तुल्य वेगम, मनुज कहते मन के समान जिसकी तीव्र गति हो, मन कितना तेज जा सकता है, अब कहीं भी बैठे हो मन से आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, एक सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जा सकते हैं, और वायु की गति बहुत तेज है। वैसे गति तेज किसकी है, बोला वायु की, गरुड़ की, मन की और हनुमान की, इनकी गति बहुत तेज तीव्र गति वाला है ये। तो मनुज्वम मन के समान, मारुत तुल्यम हवा के समान, मनुज्वम मारुत तुल्यम बुद्धिमताम बहुत तीव्र गति से चलने वाले ये बजरंग बली वजर अंग, वजर अंग का मतलब जिसका अंग वजर जैसा है, जिसको कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता है, वो भगवान के नाम से ऐसा रचा पचा है, उसके रोम रोम में राम बसता है, और वो उसका अंग वजर का है। वजर कहते हैं, और जो जो इंद्र के पास अस्त्र है उसका नाम वजर है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और ये वज्र इंद्र जी ने कहाँ से बनाया था? दधीचि ऋषि के हड्डियों से इस वज्र का निर्माण भगवान के प्रेरणा से किया गया था। और बहुत बड़े भक्त असुर वृतासुर के वध के लिए इस वज्र का निर्माण, 100 दंत वाला ये वज्र इंद्र के पास भगवान की प्रेरणा से, नारायण की प्रेरणा से दधीचि ने अपने अस्थियों का दान दिया था, जिससे ये वज्र बनना था। और वज्र काटे अस्त्र है, ऐसे हनुमान वज्र के अंग, अंग का मतलब उसका सारा शरीर वज्र के अंग का बना हुआ है। ये बजरंग बलि, वज्रंग बलि बड़ा बलवान है। सो बजरंग बलि कैसे हैं? बोला बुद्धिमताम, बड़ा बुद्धिमान है। कितना बुद्धिमान है कि भगवान राम से जब पहली बार मिलने गए, राम और लक्ष्मण से किष्कंधा कांड शुरू होने के समय ये आता है कि एक पर्वत है, ये आजकल हुबली के पास में, और किष्कंधा उसको कहते हैं, जहाँ सबरी माता से राम जी मिले थे, और वहाँ एक सरोवर है, पंपा सरोवर। वहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो हनुमान जी का जन्म स्थान है ऊपर पर्वत के ऊपर, और वहाँ से जाएंगे तो वहाँ तुंगभद्रा नदी बहती है, और उस नदी के दूसरे तट के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है, और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, और हनुमान जी भी सुग्रीव जी के मंत्री हैं। तो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर क्यों सुग्रीव जी बैठे हुए थे? क्योंकि सुग्रीव को मालूम था कि बाली उसका भाई इस पर्वत के ऊपर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऋषि मतंग ने शराप दिया था। तो वहां से जब राम और लक्ष्मण को आते देखा तो सुग्रीव भयभीत हुआ कि कहीं बाली ने हमें मारने के लिए तो नहीं भेजा है। तो हनुमान जी जब मिलने आए, एक ब्राह्मण के रूप में आए, और इतना भाषण में, बोलने में इतनी भाषा पक्की थी कि रामचंद्र आश्चर्यचकित हो कि इसकी भाषा में कोई त्रुटि नहीं है, ये बुद्धिमानों में वरिष्ठ है। लेकिन भगवान ने बात नहीं कही, लक्ष्मण को कहा कि इनको परिचय दो। क्यों नहीं बात की? क्योंकि असली रूप में नहीं आया था, वो ब्राह्मण बट्टू के रूप में, ब्राह्मण बन के आ गया था। लेकिन जब लक्ष्मण ने परिचय दिया और हनुमान अपने रूप में आया, तब राम जी ने उनसे संबोधन किया। तो भगवान के सामने हनुमान जब आए तो इतने बुद्धिमान थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वरिष्ठ कहते हैं बुद्धिमानों में सबसे उत्तम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम, वात कहते हैं वायुदेव को, आत्मज कहते हैं उनका पुत्र। तो हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहते हैं, उनके पिता का नाम केसरी है, ये वानर राज केसरी। अंजनी सुत भी कहते हैं, उसकी माता का नाम अंजनी है, ये अंजनी एक अप्सरा थी, बृहस्पति की सेवा में थी। अंजनी माता बृहस्पति की सेवा में जल भरने के लिए नदी के तट पे गई थी, और वहां कुछ गंधर्व थे, उनको देखकर थोड़ी देर रुक गई, और जल भर के लाने में देर हुई, और बृहस्पति ने ध्यान करके देखा, और वहां से जब आई, गंधर्वों को देखा था, तो उसके मन के अंदर गंधर्वों का भाव आया। आते ही ऋषि को चपक गई, हाथ लगाने लगी, उसने बोला बंदरिया की तरह तो क्या ऊपर उछल कूद कर रही है, जा बंदरिया बन जा। तो उस अप्सरा को ऐसे ऋषि के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा जब श्राप मिला, तो उसने कहा महाराज क्या कर सकते हैं, नदी पे मैंने गंधर्व देखे, मेरा मन विचलित हो गया, आप कृपा करके क्षमा करो। बोला नहीं, मेरे मुख से अगर श्राप निकला है तो इसमें भी कोई वरदान होगा, निश्चित रूप से तुम पृथ्वी के ऊपर जाओ, भगवान राम के महान भक्त हनुमान को प्रकट करने के बाद तुम वापस यहाँ मेरी सेवा में अप्सरा के रूप में आ जाना। ऐसे ये अंजनी अप्सरा केवल हनुमान को जन्म देने के लिए ही धरती के ऊपर बृहस्पति के सह के शराब से आई थी। और माता अंजना का पुत्र भी कहते हैं, और इसको रुद्र का अंश भी कहते हैं, ये शंकर जी के अंश है, हनुमान जी शंकर जी का अंश है। तो हनुमान जी शंकर जी का अंश कैसे है, ये भी भागवत में, जहाँ समुद्र मंथन की कथा के बाद भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया, और अमृत का जब बांटन करने लगे, उस वक्त देवताओं को तो अमृत पिलाया और असुरों और देवताओं में संग्राम हुआ, लेकिन उन सब देवताओं में शंकर जी नहीं थे। उनको आश्चर्य लगा कि भगवान ने ये कैसा स्त्री का मोहिनी मूर्ति रूप लिया। वो पार्वती को साथ लेकर नंदी के ऊपर चढ़कर भगवान विष्णु के पास गए कि मैंने आपके सब अवतार देखे, सबका सुंदर दर्शन किया है, लेकिन ये मोहिनी मूर्ति का रूप मैंने देखा नहीं है। मोहिनी मूर्ति का मंदिर आपने भारत में शायद कहीं देखा नहीं हो। कभी बद्रीनाथ जाते हो तो रास्ते में जहाँ वो श्रीनगर आता है, वो श्रीनगर जो एक समतल धरती का टुकड़ा आता है बद्रीनाथ और हरिद्वार के बीच में, वहाँ गंगा जी के तट पे आर्मी की कैंप से अंदर जाएंगे तो मोहिनी मूर्ति का मंदिर है। एक बार हमको वहाँ रुकना पड़ा रात को, और सुबह हमने मोहिनी मूर्ति के उस मंदिर का दर्शन करने गए। वो जो पहली एक बार बाढ़ आई थी, अभी इस बार जो बाढ़ आई थी उसमें भी उस मंदिर के ऊपर से पानी गया था और मंदिर का एक टुकड़ा ऊपर से शिखर के ऊपर का टुकड़ा गिरा हुआ था, कहीं पानी लेके गया था। तो मोहिनी मूर्ति का वो मंदिर है, उस दिन हमने दर्शन किया और एक भक्त के घर में बच्ची का जन्म हुआ तो उसका नाम ही मोहिनी मूर्ति रख दिया। वो भक्त हमारे दिल्ली में है, वो हमेशा हमारी यात्रा में जाते थे, उस बार जा नहीं पाए थे। तो मोहिनी मूर्ति भगवान का एक अद्भुत, मोहिनी का मतलब है सबको मोहन मोहित करने वाली। तो भगवान शंकर जी जब मोहिनी मूर्ति का रूप देखने आए तो पार्वती के साथ आए, लेकिन मोहिनी मूर्ति भगवान के रूप से इतने आकर्षित हो गए कि उसके पीछे भागने लगे और ऋषियों के आश्रमों के अंदर से गुजरे और मोहिनी मूर्ति को पकड़ने का प्रयास किया, वो उनके हाथ से निकल गई। और उस वक्त शंकर जी के शक्ति का हास हुआ और सात ऋषियों ने उस शक्ति को एक घट में, घट कहते हैं मटके को, उसमें रखा कि ये शंकर जी का तेज भविष्य में इस धरती के ऊपर हनुमान के अवतार के रूप में काम आएगा। और जब समय आया तो सप्त ऋषियों ने वायुदेव को कहा, हे पवन वायुदेव, इस शंकर जी के शक्ति को आप उठा के अंजनी के उत्तर में उदर में स्थापित करो। तो वायुदेव ने उस शक्ति को उठा के माता अंजनी के पास जाकर उसके उदर में स्थापित किया। इसलिए हनुमान जी को शंकर का अंश भी कहते हैं। और फिर वात आत्मजम, बात कर रहे थे वात वायु, आत्मजम का मतलब बेटा, पवन पुत्र भी कहते हैं, मारुति नंदन भी कहते हैं। ये मारुति का मतलब, मारुति मतलब हवा, हवा की तरह तेज भागती है गाड़ी, इसका नाम मारुति रख दिया। लेकिन इतनी पतली है कि इसको कहीं से मुट्ठी भी लग जाए ना किसी आदमी की तो उसके अंदर बैठे हुए की मारुति है, इतनी पतली गाड़ी है बेचारी। सो मारुति नंदन हनुमान जी का नाम है। तो ये वात आत्मजम, वानर युथ मुख्यम, वानर युथ, युद्ध का मतलब एक बहुत बड़े वानरों के समूह का, एक बड़े ग्रुप का, युद्ध का पति है वानर युद्ध मुख्यम। हाँ, मनोज्वम मार्तुल्यवेगम जितेन्द्रयाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम। राम जी के दूत हैं। दूत तो आप भाषा में समझते हैं कि जो किसी देश का एम्बेसडर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको राजदूत कहते हैं। वो राजदूत का काम क्या होता है, जहाँ रहता है अपने देश का प्रतिनिधि बन के रहता है, और कोई उस देश में जाना चाहे तो राजदूत की अनुमति होती है तब जाता है। ऐसे भगवान राम के लोक साकेत में जाने के लिए राम जी राम का दूत है इस धरती के ऊपर। और भगवान रामचंद्र जाते समय अपने साथ सारे ही अयोध्या वासियों को सरयू के माध्यम से अपने धाम ले गए, लेकिन हनुमान जी को यहाँ छोड़ गए इस पृथ्वी के ऊपर। हम रहते हैं जम्बूद्वीप में। ये जम्बूद्वीप पृथ्वी का एक धरती का टुकड़ा है जिसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। और जम्बूद्वीप में 9 वर्षों में एक वर्ष है भारतवर्ष जिसमें हम रहते हैं, बाकी 8 और वर्ष हैं जम्बूद्वीप में जो हमको आंखों से दिखते नहीं है, उसको भौम स्वर्ग बोलते हैं। भौम स्वर्ग का मतलब पृथ्वी के ऊपर वो स्वर्ग कहलाते हैं। इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं कि जो स्वर्ग लोक में जाते हैं अपने पुण्यों के कारण, वो स्वर्ग को भोगने के बाद जब उनकी भोग का समय पूरा होता है तब वापस जब धरती पे आते हैं तो पहले इन 8 लोकों में जाते हैं और वहाँ 10,000 साल रहने के बाद इस धरती के ऊपर फिर मानव के रूप में जन्म लेते हैं। तो जो देव लोक से आते हैं वो बड़े दाता होते हैं, बड़े उदार होते हैं और दान करते हैं। अब देखो जो आज संकट की घड़ी में बहुत से लोग हैं उदारता के साथ, जो उन्होंने धन अपने परिश्रम से इकट्ठा किया है, मेहनत से इकट्ठा किया है, आज जब देश के ऊपर आपत्ति है तो जो उदारता से दान कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये देवताओं के स्वर्ग लोक से आए हुए हैं, जिनकी उदारता जिसमें सेवा का भाव होता है उसको कहते हैं, देना जानता है वो देवता के लोक से आया हुआ है, ऐसे कहते हैं। जो ऐसे उदार हो, दानी हो, सुंदर हो, विद्वान हो, तो मानना चाहिए कि ये ऊपर के लोकों से आया हुआ है। और ऐसा वर्णन जो नीचे लोकों से आए हैं, नीच लोकों से आए हैं, उनका भी वर्णन शास्त्र में है, उनकी भी पहचान है। जो संसार में संकट पैदा करें, आतंक फैलाएं, महामारी फैलाएं, वो ऐसे लोग भी हैं जो नीच जोनियों से आए हैं, नरक से लौट के आए हैं, पाप करके आए हैं, वो इस संसार के अंदर बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते हैं। तो दो प्रकार के लोग तो इस संसार में सदा रहते हैं, एक देवताओं के श्रेणी के लोग रहते हैं और एक असुरों की श्रेणी के लोग रहते हैं। इसका संतुलन जब बिगड़ जाता है तब इस धरती के ऊपर ऐसे आपदाएं आने लगती हैं। ऐसे तो भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक आप जानते ही हैं, धर्म का हानि हो अधर्म बढ़ जाए। तो अधर्म बढ़ने का मतलब कि धर्म कोई ऐसी चीज़ है जो काम है, धर्म के ऊपर चलने वाले लोग कम हो जाते हैं, अधर्म का काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तब ये संतुलन खराब होता है। तो अधर्म के ऊपर चलते हैं वो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो धर्म के ऊपर चलते हैं वो दैवी प्रकृति के लोग हैं। तो हम बात कर रहे थे उन 8 वर्ष जो इस जम्बू द्वीप में है, उसमें से एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष। किम पुरुष का मतलब है क्या ये पुरुष है, क्या जैसे मानव है क्या वो। किम पुरुष लोक में हनुमान जी आज भी रामचंद्र की उपासना कर रहे हैं। कल से हम जो श्लोक 4-5 भागवत में किम पुरुष लोक में हनुमान जी राम जी की कैसे प्रार्थना करते हैं, इन श्लोकों का पाठ करके भागवत से हनुमान जी का आज जो प्रार्थना इस वक्त धरती के ऊपर रहते हुए राम जी की कर रहे हैं, उसका कल हम भगवान ने चाह कृष्ण की कृपा हुई राम जी का आशीर्वाद मिला तो कथा को बढ़ाएंगे। लेकिन आज कथा कर रहे हैं कि वहां हनुमान जी को भगवान रामचंद्र पीछे छोड़ गए। बोला कहां हनुमान जी होते हैं, जहां जहां रघुनाथ की कथा कीर्तन होते हैं वहां हनुमान जी आ जाते हैं। राम कथा में हनुमान निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से आते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हमारी आंखों से देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि ये चिरजीवी हैं, ये इस धरती के ऊपर जब तक राम कथा चलती रहेगी तब तक रहेंगे, और ये लोगों के राम के दूत के रूप में हैं, तो राम के लोक में भेजने के लिए। अब देखिए कि राम जी के इतने मंदिर भारत में नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिरों की कोई गिनती नहीं कर सकता है, जहाँ देखो हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि भक्त के संग से भगवान को मिलना एक ही मात्र साधन है। तो हनुमान जी, हाँ हनुमान जी की प्रार्थना में कहते राम दूतम, राम जी के दूत हैं, राम जी से मिलाने वाले हैं और राम जी के भक्तों के संकट हरने वाले हैं। राम दूतम सिर से नमामि, उसको हम अपने सिर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भी भक्त है तो हम उसको प्रणाम करते हैं। और आप मंगलाचरण में आइए, राम के पूरे दरबार को प्रणाम करते हैं। रामम रामानुजम सीताम भरत भरतानुजम सुग्रीवम वायुसोनम च प्रणमामि पुनः पुनः, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ राम और राम के अनुज भरत को और सीता को और राम और राम के अनुज लक्ष्मण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण का नाम है रामानुज, राम का अनुज। वैसे कृष्ण को भी रामानुज कहते हैं, क्योंकि बलराम जी का एक नाम है राम, और राम के छोटे भाई के नाते कृष्ण को भी रामानुज कहते हैं, बलराम जी के अनुज या छोटे भाई। और बलराम जी को कहते हैं कृष्ण अग्रज, कृष्ण का बड़ा भाई, बड़े को अग्रज कहते हैं, छोटे को अनुज कहते हैं। तो राम राम अनुजम सीताम, राम को प्रणाम करते हैं, राम के अनुज लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण तो गुरु है, आदि गुरु, जितने गुरु इस संसार में हुए हैं, हैं और भविष्य में होंगे, उन सारे गुरुओं के अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति से वो अपने भक्तों को तारते हैं भवसागर से, वो सारी शक्ति इसी लक्ष्मण से आती है, इसी बलराम से आती है। यही आदि गुरु हैं, यही असल में आचार्य है, गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व है। और ये क्या करते हैं, ये भगवान, ये विष्णु तत्व हैं। लेकिन भगवान जब अपनी सेवा करने सिखाना चाहते हैं तो ऐसे लक्ष्मण के, बलराम जी के या नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेवा करते हैं, किसकी, भगवान की। हैं क्या, हैं भगवान, लेकिन हमको भगवान की सेवा करना सिखाने के लिए आचार्यत्व का काम करते हैं। जितने भी गुरुजन हुए हैं, हैं या भविष्य में होंगे, उन सब सद्गुरुओं को शक्ति जो होती है, जिससे वो भवसागर पार कराने के लिए अपने अनुयायियों को, शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वो सब लक्ष्मण जी से आती है। लेकिन उन गुरुओं के हृदय में जो करुणा है, जो दया है, जो उनके हृदय में कंपैशन है, जो दूसरे का दुख देख नहीं सकते हैं, उनके भले के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं, ये जो गुरु के अंदर करुणा है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति हलादिनी का कृपा और स्वरूप है, स्वरूप है उसका। जैसे सीता भगवान राम की हलादिनी शक्ति है, इसकी कृपा, जब इसकी कृपा होती है तब गुरु के हृदय में करुणा आती है, करुणामयी है, दयामयी है। राधा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, ये गुरु की करुणा, करुणा की मूर्ति है। और गुरु की शक्ति लक्ष्मण जी से आती है, तो आचार्य लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से ही राम जी को प्राप्त किया जा सकता है। और भरत, भरत अनुजम, भरत और भरत के अनुज शत्रुगण को प्रणाम करते हैं, जिनके नाम लेने से बाहर के शत्रु नहीं, हमारे अंदर के शत्रु, काम क्रोध लोभ, जो हमारे को संसार में पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनको भी नाश किया जा सकता है। और भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। राम जी राजा थे, वनवास चले गए, तो पूरे अयोध्या वासियों का भरण पोषण भरत जी कर रहे थे। और फिर कहते हैं भरत, भरत अनुजम सुग्रीवम, अरे पांचवा नाम सुग्रीव का ले लिया। ये सुग्रीव को जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके, तो अपने गुरुजनों को, वशिष्ठ आदि को और अपनी माताओं को कहने लगे कि ये सुग्रीव ने अपनी सेना से हमारी सहायता करके रावण और उसके असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कराई है। और सुग्रीव को कहने लगे, सुग्रीव ये गुरु जी की कृपा और गुरुजनों की कृपा और माताओं के आशीर्वाद से हमने रावण के शत्रुओं के, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की है। राम जी ने सब किया स्वयं ने, एक तरफ सुग्रीव को श्रेय दे रहे हैं और एक तरफ गुरुजनों की आशीर्वाद को प्रथमता दे रहे हैं। उस वक्त भरत ने सुग्रीव को गले लगाकर कहा कि आप हमारे पांचवें भाई हो, हम चार भाई, हम में से दो तो राम जी की सहायता करने के लिए लंका में युद्ध में जा नहीं सके, और आपने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने सारे वानर सेना के साथ राम जी की सहायता किया, आप हमारे पांचवें भाई हैं। और गले लगा के कहा, सुग्रीव आप हमारे भाई हो, भरत सम भाई, भरत के समान मेरे भाई हो। तो सुग्रीव को भी यहाँ प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम जी की सेवा करने वाले सब भक्तों को प्रणाम करते हैं। सुग्रीव वायु रामम राम अनुजम सीताम, भरत भरत अनुजम सुग्रीवम वायु सोनम च वायु सोनम, फिर वायु के पुत्र, प्रणमामि, पुनः पुनः बार बार उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये श्लोक तो आज हमने इसका थोड़ा सा व्याख्या करके आपको बताया। ये मंगलाचरण के श्लोक पढ़ेंगे रोज नित्य नेम से, लेकिन फिर इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये पांच श्लोक पढ़े हैं जो पांच होंगे, हाँ, तो इसका पाठ एक बार मैं वैसे भी कर लेता हूँ, अगर किसी को सुनना है तो याद करके याद भी कर सकता है। वाल्मीकि गिरी संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्यम रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य षटकोटि विस्तरतरम एकैकक्षरम पुंसाम पुनाति महापातकम कूजन्ति राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम मनुन मनुज्वम मार्तुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरण शीर्षे नमामि रामम रामानुजम सीताम भरत भरतानुजम सुग्रीवम वायुसोनम च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्यारे प्यारे सत्संगियों, लॉकडाउन में अपने घर में लॉक हो फिर भी कथा के ऊपर कोई लॉकडाउन नहीं है, कीर्तन के ऊपर लॉकडाउन नहीं है, आपस में बैठकर भगवान की कथा सुनने के ऊपर भी लॉकडाउन नहीं है। तो आइए रामायण के अंदर राम आयनम यस्य स रामायण, राम के घर को रामायण कहते हैं, राम के चरित्र जिसमें है उसको रामायण कहते हैं। और इसके अंदर है कांड, कांड का मतलब एक पूरा हिस्सा जिसके अंदर कई अध्याय हैं, उसमें एक खास विशेष जगह की वाका वर्णन, विशेष लीला का वर्णन किया गया है। तो पहला जो कांड है रामायण का उसका नाम है बाल कांड। बाल कांड में वाल्मीकि जी ने एक अध्याय में संक्षेप रामायण लिखी है। फिर ये रामायण भगवान राम के सीता के दोनों पुत्र लव और कुश, इस रामायण को राम जी के अयोध्या के महल में गा रहे हैं, यहां से बालकांड शुरू होता है। और बालकांड चलता है राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह के बाद। बारात वापस लौटती है अयोध्या में जनकपुरी से, और भरत और शत्रुघ्न को केकई का भाई युधाजित मामा केकई देश ले जाते हैं। केकई देश जो तकसीला है आजकल, जो इस वक्त फ्रंटियर में है, पाकिस्तान के भाग में आता है तकसीला, उसका पुराना नाम केकई देश था। वो जब भरत और शत्रुघ्न को केकई देश ले जाते हैं, यहाँ बालकांड पूरा होता है और यहां से दूसरा कांड शुरू होता है, उसको कहते हैं अयोध्या कांड। और ये अयोध्या कांड बहुत बड़ा करुणा का कांड है, हृदय को द्रवित करने का कांड है, जिसमें राम जी के युवराज पद के अभिषेक की कथा से शुरू होता है, राम जी के गुणों से शुरू होता है। और जब तक राम जी चित्रकूट में भरत से मिलने के बाद भरत को अपनी खड़ाऊ देते हैं सिंहासन के ऊपर रखने के लिए, और वहां से निकल के अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं और अनुसुया माता सीता को नारी धर्म का उपदेश देती है, और यहां से बाहर निकलते हैं तो दंडक अरण्य में प्रवेश करते हैं, यहां से अरण्य कांड तीसरा शुरू होता है। तो पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे का नाम है अरण्य कांड। अरण्य कहते हैं वन को, फॉरेस्ट को अरण्य कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि वहां कोई रण नहीं होता, रण का मतलब युद्ध नहीं होता है, शांति होती है। इसलिए साधु संत महात्मा राजा लोग पहले राज को छोड़ के और चले जाते थे कोई पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, रितेश बिक्की, अरे रितेश बिक्की मॉरिशस से क्या पूछ रहा है, लक्ष्मण को भेजा था राम जी से जाके कुछ पूछ के आओ, तो बहुत अच्छी शिक्षाओं में एक शिक्षा तो ये, पहले तो वो जाके सर के पास खड़ा हो गया तो रावण बोला ही नहीं, वापस आके कहा कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोला कहाँ खड़े हुए थे, सर के पास नहीं, बोला ब्राह्मण है, पुलस्त का पोता है, विशर्वा का पुत्र है, कल आपको बताएंगे रावण जी के पिता का नाम है विशर्वा, माता का नाम है केकसी, विशर्वा पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं, अरे विशर्वा के दूसरे पुत्र का नाम कुबेर है, ये कुबेर जो हमारे दिग्पालों में कोष अध्यक्ष देवताओं के, वो रावण का भाई है, पिताजी दोनों के एक हैं, माता में अंतर है। सो कहा कि उसके चरणों के पास खड़े होके पूछो, तो लक्ष्मण ने जब पूछा था तो उन्होंने चार बातें कही थी, हमको दो याद हैं, हम आपको बता रहे हैं। रावण ने पहली बात कही थी कि अच्छे काम करने में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छा विचार आए तो तत्काल करना चाहिए, और विशेष रूप से आजकल जो कोरोना वायरस की संकट चल रहा है, किसी के मन में किसी की सहायता करने का विचार आए तो तत्काल कर देना चाहिए, क्योंकि मन बाद में बिगड़ जाता है, काम करने देता नहीं है। अच्छा काम करने का मन में विचार आए तो अच्छा काम तत्काल कर देना चाहिए, और बुरे काम का विचार आए तो उसको टालना चाहिए, जितना टाल सको बुरे विचार को टाल दिया करो। और रावण ने जो कुछ और कहा था उसके ऊपर समय आएगा तो फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब बात कर रहे थे अरण्य कांड चलता है अत्रि और अनुसुया के आश्रम से, राम जी जब निकलते हैं यहां से अरण्य कांड चलता है, ये अरण्य कांड नासिक में पंचवटी से होते हुए सीता का, सीता कौन सी सीता का, छाया सीता का, रावण के द्वारा अपहरण होता है। राम और लक्ष्मण उसको ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम तक पहुंचते हैं, और शबरी के आश्रम से शबरी को दर्शन देकर उसका उद्धार करके, जैसे ही वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे आते हैं और हनुमान से मिलन होता है, यहाँ अरण्य कांड पूरा होता है, यहाँ से किष्कंधा कांड शुरू होता है। और ये किष्कंधा कांड में राम जी और सुग्रीव की मैत्री होती है, सुग्रीव का हित करके बाली का उद्धार करके राम जी सुग्रीव को राज देते हैं, फिर सुग्रीव अपने दूतों को भेजकर सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में अपने लोगों को भेजते हैं, फिर ढूंढने वालों में जो जो दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान और जामवत के साथ जो दल गया था, उसको एक महीना आने में देर हो गई, वो समुन्द्र के तट के ऊपर पहुंचे और वहाँ जटायु के भाई संपति ने उनको लंका में सीता के रावण को ले जाने का समाचार दिया, और यहाँ सबने आपस में मिलके समुन्द्र को लांघने का विचार किया, और सबने कुछ अपने पराक्रम के विषय में कहा कि मैं इतना लांघ सकता हूँ, मैं इतना लांघ सकता हूँ, लेकिन हनुमान चुप करके बैठे रहे। जब जामवत ने हनुमान को याद दिलाया तो हनुमान ने कहा ये 100 योजन में जाके वापस आ सकता हूँ, आप सब यहाँ ही रुकिए, मैं जा रहा हूँ और मैं सीता का पता लेकर आता हूँ। और महेंद्र पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़े, यहाँ किष्कंधा कांड समाप्त होता है। यहाँ से हनुमान की यात्रा लंका में जाके सीता का पता लगाने की है। सीता का पता लगाने के बाद वापस अपने दल के साथ जब लौट कर किष्कंधा आते हैं और सुग्रीव के बुलाने के ऊपर राम जी के सामने सीता का समाचार सुनाते हैं और सीता की दी हुई चूड़ामणि देते हैं, तब राम जी कहते हैं कि अब देर नहीं कीजिए, अच्छे मुहूर्त में यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और समुद्र के तट तक जब आके बैठते हैं और समुद्र के तट के ऊपर रास्ते के लिए समुद्र की प्रार्थना करते हैं, समुद्र नहीं आता है, तब तक वह भीषण भी शरण में आ जाता है और फिर सेतु बनती है। यहाँ तक तो ये सुंदर कांड है जिसमें हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है, और सेतु के बाद जैसे लंका में प्रवेश करते हैं इसके बाद युद्ध कांड है या लंका कांड है। ये लंका कांड चलता है जब तक राम जी विभीषण को लंका के राज सिंहासन के ऊपर लक्ष्मण के द्वारा स्थापित करने के बाद राव, असल में ये पुष्पक विमान जो मंत्रों के बल से मन की शक्ति से चलता था, संकल्प से चलता था, ये रावण के पास, ये कुबेर का था, कुबेर को जब लंका से रावण ने निकाला था तो विमान भी उससे छीन लिया था। ये विमान लंका में था और इस विमान के ऊपर राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ, हनुमान और सुग्रीव के साथ और विभीषण के साथ और अंगद के साथ किष्कंधा से सुग्रीव की पत्नी रोमा को भी साथ लिया और ये वापस जब लौटे नंदी ग्राम तक पहुंचे हैं, यहाँ फिर युद्ध कांड समाप्त होता है और यहाँ उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र का राज तिलक होता है। यहाँ तक तो ये कांड पूरा होता है। इसके बाद जो कुछ हुआ, बहुत से ऋषि आए थे, महात्मा आए थे, राम अगस्त ऋषि के साथ बहुत से ऋषि थे, अगस्त उनका नेता थे। राम जी ने उस सभा में पूछा और जो प्रश्न पूछे हैं कि आप इतना असुरों की बात, असुरों के पहले वंश का उत्पत्ति कैसे हुई ये बताइए, आप रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ की वीरता की बात कर रहे हो लेकिन मैं हनुमान जी की वीरता मेरे आंखों के सामने देखी है, तो अगस्त जी यहाँ से हनुमान की वीरता और असुरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, यहाँ से उत्तरकांड शुरू होता है। इस उत्तरकांड में फिर लवकुश का जन्म होता है और आदि कुछ कथाएं हैं जो इस उत्तरकांड में, तो इस प्रकार ये 7 कांड है रामायण में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्कंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, जिसमें उत्तर का मतलब राम के राजतिलक के उपरांत उसके बाद में क्या हुआ। तो कल हम बाल कांड में कैसे वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक अचानक निकला, वाल्मीकि जी के ऊपर नारद जी ने कैसे कृपा करके राम शब्द जपने को कहा और फिर वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के किनारे के ऊपर 2 करुंच पक्षी नर और मादा को एक शिकारी के द्वारा तीर मारते हुए देखा तो हृदय में करुणा हुई और एक श्लोक उनके मुख से शराब के रूप में शिकारी के लिए निकला लेकिन वो आशीर्वाद के रूप से पूरी रामायण का सूत्र रूप है। और फिर ब्रह्मा जी ने, पहले नारद जी ने वाल्मीकि के ऊपर कृपा की, फिर ब्रह्मा जी ने आके कृपा की, फिर सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में रही उसकी जब कृपा हुई, अब 3 कृपाएं जब इकट्ठी हुई तब रामायण का प्रकट्य वाल्मीकि जी के द्वारा कैसे हुआ, ये कथा यहाँ से आगे कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, जय सियाराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।